ओम शांत। हम सभी बाबा के बच्चे इस सारे विश्व से चुनी हुई आत्माएं हैं। जिसने चुना है उसने बहुत कुछ देखकर चुना है। सबसे पहले देखा है कि यही वो आत्माएं हैं जो मेरी स्थापना के कार्य के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। ये भी देखा है कि इन्हीं के अंदर मेरे कार्य के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी की भावना है। ये अपना सब कुछ स्वाहा करने के लिए तैयार हैं। अनेक योग्यताएं देखकर बाबा की नजर हम सब आत्माओं पर पड़ गई। उसने हम में उम्मीदें रखी और हम सभी को उमंग हो उसकी उम्मीदों को पूर्ण करने का है। सभी के अंदर बाबा की उम्मीदों के सितारे हैं हम। हमें अपने प्रकाश से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। जो उम्मीद बाबा ने रखी है उसकी गहराई को भी जानना है। लौकिक में भी किसी में कोई उम्मीद रखे, कुछ देखकर कोई उम्मीद रखता है। बाबा ने हम सब में उम्मीद रखी और बहुत कुछ देखा, देखने के साथ बहुत कुछ दे भी दिया। कुछ शक्तियां हम सबको जन्म लेते ही दे दी जो स्थापना के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार हों। तो ऐसे समय की ओर हम बढ़ रहे हैं। चाहे कोई नए हैं आप में या पुराने, एक साल के भी हैं, उससे कम के भी, अब वो समय है जबकि हमें एहसास होना चाहिए कि समय हमारा आह्वान कर रहा है। हम बहुत समय से समय का आह्वान कर रहे थे, ऐसा समय आए, ये हो हमारे सामने। विजन बनाई थी हम सबने, कुछ कल्पनाएं की थी, दृश्य बनाए थे, कितना अच्छा हो भगवान इस धरती पर हो, वो ज्ञान की गंगा बह रहा हो, वो आत्माओं में भाग्य बांट रहा हो और हम भी उसके सामने हो। ऐसी अनेक कल्पनाएं, विजन्स, दृश्य हम सब ने बनाकर रखे थे। समय ने हमारी मांग को पूरा कर दिया। अब समय की मांग हमें पूरी करनी है। लौकिक फील्ड में रहते हैं आप सभी, टॉपिक भी है लौकिक में रहते हुए अलौकिक हो जाएं, फरिश्ते बन जाएं, लौकिक का प्रभाव छुए नहीं, देखने वाले को हम में लौकिकता दिखाई न दे, हमें भी महसूस हो और दूसरों को भी कि ये इस दुनिया के रहने वाले नहीं हैं, ये संसारिक मनुष्यों जैसे नहीं हैं, ये कुछ अलौकिक हैं, इनमें दिव्यता है, इनके विचार हमसे भिन्न हैं, इनमें कुछ तेज है, कुछ साधनाएं हैं इनकी, इसके लिए हम क्या करें। आज हम सभी को मिलकर इस टॉपिक को डिस्कस करना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक है। हर एक व्यक्ति लौकिक में है, लौकिक कार्यों का प्रभाव, लौकिक बिजनेस का प्रभाव, उस कार्य में रहने वाले साथियों का प्रभाव और कलयुग के वातावरण का प्रभाव, ये सब प्रभाव एक साथ हमारे ऊपर आकर हमें लौकिक में ही रखते हैं। अलौकिकता के लिए पुरुषार्थी को संघर्ष करना पड़ता है और अनेक बार उसको निराशा ही दिखाई देती है और प्राय ये प्रश्न सभी के मन से उभरता है कि जितना चाहते हैं उतना इन लौकिक झंझटों के कारण हो नहीं पाता। अगर इन झंझटों से हमें मुक्त कर दिया जाए तो हम अपने जीवन को बहुत जल्दी अलौकिक बनाकर दिखा सकते हैं। अगर आपको इन झंझटों से मुक्त कर दिया जाए अब से आगे तक के लिए, तो क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह अलौकिक बना लेंगे? गारंटी? या फिर कोई और कारण निकाल देंगे? विचार करो आप, कारण और बहाने, इसकी तो लंबी लिस्ट है हर मनुष्य के पास। बहुत बंधन है, मन के भी बहुत हैं, कभी तन के, कभी संस्कारों के, और बहुत सारे बंधन जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं वो मनुष्य को नीचे ले आते हैं। खैर, अब तो आप लौकिक में हैं, और श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही है, बाबा के महावाक्य भी हैं ये, जो हर परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति को ऊंचा रखना जानता हो, जो परिस्थिति बदलने का इंतजार करता है, जो समय बदलने का इंतजार करता है, जो ये इंतजार करता है कि ये विघ्न हट जाए तो मेरी लाइन क्लियर हो जाए, वो कभी स्वस्थिति को प्राप्त नहीं होते। ये हमें समझ लेना चाहिए, और ये भी समझ लेना चाहिए कि परिस्थिति बदलेंगी भी नहीं, बदलेंगी तो और भयानक होकर ही आएंगी सामने, बदलेंगी तो जरूर उल्टे रूप से बदलेंगी। अगर हम उनको बदलने वाले बन जाएं अपनी स्वस्थिति से, अपनी शक्तियों के द्वारा, तो परिस्थिति सदाकाल के लिए हमारे अधिकार में आ जाएंगी, और तब वो हमें प्रभावित नहीं करेंगी, हम उनको प्रभावित करेंगे। तो जरा विचार करें, कौन सी बातें ऐसी हैं जो लौकिक धंधों में रहते हुए, नौकरियों में, बिजनेस में रहते हुए आत्मा को लौकिक बहाव में बहाए रखती है? ऐसी कुछ बातें जरूर हैं जिनकी जानकारी, जिनकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि ये फैक्टर्स हैं, ये स्मृतियां हैं, ये हमारे संकल्प हैं, ये हमारे झुकाव हैं जो हमें लौकिक में बहा ले जाते हैं। कौन सी बातें हैं वो? एक एक बोलेंगे हाथ उठाकर। देह के संबंधों में बहुत आकर्षण, देहधारी के बारे में चिंतन, और ये मेरा है, ये तेरा है, ये भावनाएं जो आत्मा की शक्तियों को बिखेर कर रखती हैं, हद की बातें, और दैहिक वस्तुओं में बहुत ज्यादा लगाव, या दैहिक वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्ति करने की बहुत तीव्र कामना, जन्म के साथ जुड़ी हुई दैहिक जिम्मेदारियां, सांसारिक जिम्मेदारियां जो हैं, लोक लाज का भी भय, अहम भाव, संग्रह करने की इच्छा, देह में आकर्षण, और भी कुछ, मेहमान न समझना, तभी तो ये सब कुछ है, वो तो उत्तर है इसका, संग दोष। इसके अलावा संसार की बहुत सारी स्थूल कामनाओं के साथ सूक्ष्म कामनाएं, जिसको बाबा के महावाक्यों में हमेशा सुना गया, कामनाएं आत्मा को कमजोर करती हैं। सूक्ष्म कामनाएं, जो स्थूल चीज है उनको इच्छा कह ले हम, और जो सूक्ष्म है उनको कामना कह ले, ये आत्मा को बहुत निर्बल कर रही है। और अब एक इधर का कारण कि ज्ञान में आने के बाद ज्ञान और योग के द्वारा कुछ ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति करने के उमंग की कमी, उमंग सबको होता है, लेकिन वो उमंग दिल से निकल रहा है या वो उमंग कभी बाबा की मुरली सुन ली तब पैदा हो गया, कोई संदेश आ गया तब पैदा हो गया, कोई उमंग की क्लास मिल गई तब सोचा बस अब तो मर मिटेंगे, ऐसा उमंग जो किसी आधार पर आधारित है, सदाकाल के लिए कायम नहीं रहता और ये उमंग की कमी, ये ऊंचे लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति की कमी लौकिकता की ओर बहा ले जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा को, मन को सदा ही संतुष्टता की जरूरत है, आनंद की जरूरत है, उसे सुख चाहिए। हर चीज, जैसे विज्ञान के द्वारा, जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वो जानते होंगे, विज्ञान का एक ये बहुत सूक्ष्म सा सिद्धांत है कि हर पदार्थ, हर तत्व, हर एटम, हर इलेक्ट्रॉन अपनी मूल स्थिति में जाने के लिए हमेशा ही उत्सुक है। ठीक वैसे ही आत्मा भी अपनी मूल स्थिति में जाने के लिए उत्सुक हो रही है। हम उसको रोकते हैं, विकार उसको रोकते हैं, अनेक मायावी बंधन उसको रोकते हैं। तो आत्मा निरंतर संतुष्टता चाहती है, वो एक विशेष तरह का आनंद चाहती है, उसकी खोज है उसे, वो सुख चाहती है। और जब इधर से हमें प्राप्त नहीं होता अलौकिकता में, तो उसका लौकिक बहाव में बह जाना बिल्कुल नेचुरल है, उसको रोका नहीं जा सकता। अगर वहां से भी रोक दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उदासी, निराशा, न इधर न उधर, उदास हो जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं मन लगा जरूर रहता है, ये उसकी सहज स्वाभाविक गति है। तो ये सब कारण आत्मा को लौकिक बहाव में बहा ले जाते हैं। अब हमें इनसे मुक्त होना है। मुक्त होने के कुछ बहुत पॉजिटिव पावरफुल तरीके आपके ख्याल में रहें। पहली एक चीज, जो लोग भी कारोबार में रहते हैं, अगर वो बहुत सारे लोगों का निरीक्षण करे, सर्वे करे, तो उन्हें एक चीज अवश्य दिखाई देगी। अपने ब्राह्मण परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत बहुत काम होते हुए, बहुत बहुत जिम्मेदारियां होते हुए, वो बहुत हल्के रहते हैं, कोई परिस्थिति उन्हें नजर नहीं आती अपने जीवन में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें काम थोड़ा, परिस्थितियां बहुत, संघर्ष बहुत, टेंशन बहुत। क्यों? मान लो एक ही तरह की दो दुकानें, दो भाई कर रहे हैं बिल्कुल साथ, समान रूप से दोनों पर ग्राहक आ रहे हैं, समान रूप से उन्हें आमदनी हो रही है, एक बहुत परेशान, दूसरा बहुत सुखी। क्यों? हाँ, अब इनके कारण आप निकाल लें और उन कारणों का हमें, मतलब हमारा विवेक उनको स्वीकार करता हो, ताकि हम अपने जीवन को देख पाए कि अगर हमने अपना जीवन संघर्ष में बना लिया है, अगर उसमें कदम कदम पर रोड़े दिखाई देते हैं, अगर न चाहते भी घन आते रहते हैं, एक को हटा ही रहे थे तो दूसरा आ गया, क्या उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं? या हम अपने पिछले कर्मों को उनका दोष देकर निश्चिंत रहते हैं? क्या कारण है इनके? स्वयं। कौन सी स्वयं की चीज? पिछले जन्म के तो हैं ही, वो जिम्मेदार हैं हमारे कर्म, हमारे संस्कार, विकार, पाप, लेकिन उसके लिए तो अब हम कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो बीत गया, उसे तो हमें योग बल से ठीक करना होगा। लेकिन वर्तमान को हम देखें, हालांकि वर्तमान भी हमारा पास्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वर्तमान में हमें इसको बदल देने की संपूर्ण रोशनी और शक्ति प्राप्त है। इसलिए ये पास्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे छोड़ दें, ऐसा हम नहीं कहेंगे। तो हमारी कौन कौन सी चीजें हमारे अपने मार्ग में बाधक हैं? पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, स्वभाव संस्कार। और उसमें भी कौन सा स्वभाव? हाँ ठीक, कौन सा स्वभाव सबसे ज्यादा बाधक है? चिड़चिड़ापन, क्रोध भी उसमें आ गया, अहम भी उसी से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का चिड़चिड़ा स्वभाव, एक चीज होती है आदत और दूसरा स्वभाव, इसका दोनों का अंतर समझते हैं ना, क्या अंतर है? आदत और स्वभाव। आदत माना नेचर अंग्रेजी में, और स्वभाव माना नेचर, और आदत माना हैबिट। इंग्लिश के ये दो प्रॉपर वर्ड है इनके लिए, नेचर स्वभाव के लिए, हैबिट आदत के लिए। आदत वो जो तत्काल हमारे कर्मों के आधार से बन जाती है। वे इसकी खाने की आदत है, इसकी चोरी करने की आदत पड़ गई है, है इसकी झूठ बोलने की आदत, करते करते दो चार बार वो आदत पड़ गई जो पीछे जाके संस्कारों में बदल जाती है। स्वभाव आत्मा का जो भाव बन गया है लंबे काल से विकारों के वश, एक आत्मा का मूल स्वभाव है और उसमें विकृति आने से जो कुछ बन गया है वो स्वभाव हमारे मार्ग में सबसे अधिक बाधक है। तो चिड़चिड़ेपन का स्वभाव जो कुछ कारणों से बनता आया है, विकारों के कारण बनता आया है, चिड़चिड़ेपन से आत्मा की शक्तियां बहुत नष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने लौकिक जीवन को अलौकिक बनाने के लिए आदत डालनी पड़ेगी सहज जीवन जीने की, हमारा लाइफ इजी लाइफ हो जाए। और उसके लिए जहां ज्ञान और योग की और सारी बातें हमें जोड़नी होंगी, उसमें सबसे पहला स्टेप कि हमें सरल चित्त होना पड़ेगा। बाबा की मुरलियों पर हम ध्यान दें तो सरलता पर अधिक से अधिक बोला है। 69 से जब से बाबा की मुरली शुरू हुई अव्यक्त, मैं देखता आया कि सरलता पर बाबा की सबसे ज्यादा मुरलियां हैं और अच्छे अच्छे महावाक्य कि अगर तुम सरल चित्त रहो तो तुम्हारा जीवन सरल हो जाए, तुम्हारे कर्म बंधन, तुम्हारे विघ्न, तुम्हारे धंधों में आने वाली कठिनाइयां, तुम्हारे संबंध संपर्क सब सरल हो जाए। तो जरा सरलता पर ध्यान दें, जीवन के हर क्षेत्र में सरलता का संबंध आता है। हम अपने स्वभाव को ऐसा ढाल लें कि किसी भी बात को सीरियसली लेने की आदत न रह जाए, गंभीरता से न लेने लगे। अब आप देखें कदम कदम पर हमारे सामने ये बातें आती हैं। आपने किसी को बुलाया है कि भाई 10 बजे आ जाना और वो आने में 15 मिनट लेट हो गए, इस 15 मिनट में आप परेशान, आप इसको सीरियसली ले रहे हैं बहुत। देखा आजकल कोई भी मनुष्य संसार में टाइम पर नहीं आता है, कैसे लोग हो गए हैं, कितना टाइम दिया था, मेरा मूल्यवान टाइम वेस्ट किया जा रहा है, इतने में मैं ये काम कर लेता, और सीरियसली लेके आपने अपने संकल्पों को उलझा दिया, शक्तियां नष्ट हो गई। 15 मिनट नष्ट से ज्यादा वैल्यू है 15 मिनट में जो संकल्प नष्ट हुए, तो स्थिति नष्ट हुई, ठीक है ना। 15 मिनट तो और कहीं से निकाले जा सकते हैं और उन 15 मिनट को सफल किया जा सकता है और काम में। तो जीवन में किसी भी चीज को सीरियसली न लेना, सीरियसली अगर लेना है तो अपनी कमजोरियों को, ऐसे नहीं कि सवेरे नहीं उठे कोई बात नहीं, इसको सीरियसली लेना है, दूसरों की कमजोरियों को लाइटली लेना है बहुत हल्के रूप से, और अपनी कमजोरियों को सीरियसली लेना है, लेकिन इतनी सीरियसली नहीं। अब यहां सीरियस का भी एक बैलेंस है कि वो सीरियसनेस हमारे लिए टेंशन बनी रहे कि आज तो हम सवेरे नहीं उठे, बस परेशान रहे सारा दिन कि आज तो बाबा की आज्ञा का पालन नहीं हुआ, सब कुछ खो दिया, क्या हमारा भी जीवन है, अनेक संकल्प। इतना सीरियसली नहीं, सीरियसली का अर्थ कि हम अपने को और दृढ़ करें, और अगर आप 5 बजे उठ गए और आपने 1 घंटा मिस कर दिया तो आप संकल्प करें कि इस 1 घंटे को कवर करना है, सारे दिन में मौन रहे, अंतर्मुखी रहे और जो कमाई मिस हुई है वो कवर हो जाए। तो पहली बात जीवन में अलौकिकता लाने की हुई सरल स्वभाव, सरल नेचर, सरल चित्त स्थिति। ये अपने में एक टॉपिक है, आप सभी चिंतन कर लें इस पर कि जीवन के हर कदम पर सरलता का उपयोग कैसे किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर सरल चित्त स्थिति हमारी हो जाए तो हम कहीं भी संकल्पों में उलझेंगे नहीं, जो बहुत बड़ी प्राप्ति है। जो पहले दिन भी हमने सुनाया था, जो भाई यहां थे, बाबा ने अभी मुरली में कहा कि पांचवी डोनर होने वाली आत्माएं संकल्पों की उलझन की सजाओं से मुक्त रहेंगी। तो जिनको ऊंचा जाना है, जिनको विजयी बनना है, आज भी विजय की बात थी मुरली में, वो संकल्पों को कभी न उलझाना है, इस पर जरा चिंतन रखे कि और कोई चीज खो जाए और कुछ लॉस हो जाए उसकी इतनी वैल्यू नहीं, लेकिन संकल्प अगर उलझ गए तो बहुत बड़ा लॉस हमने कर दिया। ये हमारा बिजनेस है एक बहुत बड़ा, स्वयं को संभालना, स्वयं की स्थिति को ऊंचा उठाना, ये भी एक बहुत बड़ी कमाई है, बिजनेस है हमारा। तो हम और कुछ खो दें और कुछ मिस कर दें पर संकल्पों को उलझाए नहीं, ये ऊंची जाने वाली आत्मा को लक्ष्य बना लेना चाहिए। दूसरी चीज, परिस्थितियां क्यों बढ़ती हैं, ये एक प्रयोग भी हम सब कर सकते हैं कि जब हमारे संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत बहते हैं, तो परिस्थितियां भी बढ़ने लगती हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत संकल्प चलाकर समाधान ढूंढ रहे हैं पर हम परिस्थितियों को उलझा लेते हैं। आज तक मनोवैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ली है कि मनुष्य अपने ब्रेन की बहुत थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, ब्रेन की जो स्थूल अंग है शरीर का, उनको मन बुद्धि का तो पता नहीं कि बहुत थोड़ी सी शक्ति प्रयोग कर रहा है मनुष्य अपने ब्रेन की यानी अपनी आत्मा की। अगर वो अपनी संपूर्ण शक्तियों को सही दिशा दे दे तो उसको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं रहे, कोई समस्याएं नहीं रहे। तो हमें संकल्प शक्ति के महत्व को सामने रखते हुए ये अच्छी तरह समझ लेना है कि अगर हमारे संकल्पों में समस्या नहीं होगी तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। मन की समस्या से मुक्त, संसार की समस्याओं से मुक्त। अगर मन में ही हमने समस्याएं पैदा की हुई हैं तो संसार की समस्याएं तो हावी होने वाली ही हैं। हम जानते हैं हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और विनाश की ओर बढ़ना अर्थात समस्याओं का प्रकोप में आना, संपूर्ण विकराल रूप से वार करना। जो धंधे आजकल आपके सहज चलते हैं वो चलाना कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन होगा, हर धंधे को चलाना कठिन होगा। बाबा कहते आए हैं मुरलियों में कि कलयुग में तुम्हारे सारे धंधे झूठ के धंधे हैं, सच का धंधा तो कुछ होता नहीं यहाँ। कोई इस बात में अपने को परेशान कर ले कि हमारे बिजनेस में तो हमें झूठ का धंधा करना पड़ता है इसलिए हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन कलयुग में झूठ के धंधे के बिना सतयुगी सत्य का धंधा कैसे आएगा। हमें अपनी स्थिति को सत्य बनाना है, धंधों में सत्य बनाने की होड़ में हम अपनी स्थिति को खो दें, बहुत लोग खो देते हैं। हमारे कई भाई बहने ये गलती कर देते हैं, ऑफिस में वर्क करते हुए, किसी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, किसी का पुलिस है, वहां करप्शन है, वो चाहते हैं करप्शन नहीं हो, हम ये काम नहीं करेंगे, और वो उस चेन में बंधे हुए हैं, अकेले नहीं है, अकेले आप हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ना कुछ करें, आप बिल्कुल ईमानदारी का धंधा चलाएं, जितनों को चाहे फ्री देखें, जिससे चाहे कम से कम फीस ले, वो संभव है, लेकिन आप एक डिपार्टमेंट की चेन में बंधे हुए एक व्यक्ति हैं और आप बीच से अपने को काट देना चाहते हैं कि हम तो ईमानदारी का धंधा करेंगे, तो आपके ऊपर वाले और नीचे वाले क्या करेंगे कि भाई ये आ गया है मुसीबत हमारे बीच में, इसको निकालो, यहाँ से भेज देंगे आपको पहाड़ियों पर दूर जहां पानी भी पीने को न मिलता हो। तो जिस जीवन में हम शांति लाना चाहते थे ईमानदारी के द्वारा, उस जीवन में हमने संघर्ष मोल ले लिया, संघर्ष पैदा करके। तो हमेशा अपने लौकिक कार्यों में या कहे टोटल जीवन में और सब चीजों के साथ श्रेष्ठ विवेक का प्रयोग जरूर करना है। इसको आप अंडरलाइन कर ले अपने जीवन में, कहीं क्रोध वश, कहीं आवेश वश मनुष्य अपने विवेक को भूल जाता है। आपने महाभारत की सीरियल देखी होगी, मुझे पता नहीं उसमें ये बात कही या नहीं, भीष्म जब पश्चाताप करता है अंत में बाणों की सैया पर लेटे हुए अर्जुन के सामने, तो वो ये बता रहा है कि तुम मेरे जैसी प्रतिज्ञा न करना, मैंने ये प्रतिज्ञा आवेश में कर ली थी। प्रतिज्ञा तो बड़ी अच्छी अच्छी थी, लेकिन आवेश में की गई थी, विवेक का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा कुरु वंश के संहार का कारण बन रही है। अगर मेरी ये प्रतिज्ञा न होती या मैं इसे तोड़ देता इस समय, तो ये सब कुछ न होता। तो हमेशा जीवन के हर संघर्ष में, किसी को सहयोग देने में, स्वयं को आगे बढ़ाने में जो भी प्रतिज्ञाएं की जाए, वो आवेश में आकर नहीं, वो विवेक युक्त होकर की जाए। जहां मनुष्य अपने जीवन में विवेक का बैलेंस रखना जानता है, हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं लेता, उसकी कठिनाइयां कम हो जाती हैं। और जो व्यक्ति किसी विशेष जोश के वश, आवेश के वश अच्छा काम करने के लिए भी कोई प्रण कर लेता है, उसे बाद में वो प्रण इस तरह बांध देता है जैसे विषम को बांध दिया था। तो अपने लौकिक धंधों में विवेक को कभी भी दूषित न होने दें, और विवेक ही हमारी सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ा खजाना है। यही तो खजाना बाबा ने आकर हमें दिया है, सद विवेक। और ऐसा विवेक जो बिल्कुल स्वच्छ है, उस स्वच्छ विवेक में हम कुछ तिनके न डाल दें, कुछ किचरा न डाल दिया करें, इसकी बहुत संभाल करनी है। विवेक जो बुद्धि में समाया हुआ है, उसमें किचरा कहां से पड़ता है? व्यर्थ संकल्प से, दूसरों को देखने से, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की बहुत सारी बातें देखने से हम उसमें गंदगी डालते हैं अपने विवेक में, और फिर शिकायत कर लेते हैं कि हमारे पास तो परखने की, निर्णय करने की शक्ति नहीं है, ठीक निर्णय नहीं होता हमसे तो। और अगर धंधों में परखने की और निर्णय करने की शक्तियां ठीक से काम करें, तो धंधे सदा ही सफलता की राह पर चलेंगे, चाहे किसी की नौकरी है चाहे बिजनेस। धंधों में इन दोनों शक्तियों की विशेष आवश्यकता होती है, ठीक है ना? परखना और निर्णय करना, तुरंत निर्णय लेना होता है आपको, परखना होता है बहुत सारी चीजों को। और ये दोनों शक्तियां हमारी विस्तार को पाती हैं जब हम अपने विवेक को स्वच्छ रखते हैं। तो इस तरह कुछ भी गंदगी हम अलाउ न करें अपने विवेक में। बहुत सारी गंदगी है, देखकर हम गंदगी अपने अंदर ले आते हैं। बहुत कुछ देखने को मिलता है आपको दुनिया में, बहुत गंदगी है। कलयुग में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। तो उसको देख देख कर अपने विवेक को मलिन न करें, ये इस जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। और उसको सदा स्वच्छ रखने के लिए, ये तो हुआ सावधानी, अब हमें उसकी स्वच्छता को बढ़ाना है। जो बात कम से कम सभी कुमारों को बहुत अच्छी तरह सीख लेनी है कि सभी को अपनी अध्ययन और मनन शक्ति दोनों को बढ़ाकर रखना है, रुचि रहे इस जीवन में, कुमार जीवन में। जीवन को अलौकिक बनाने के लिए इस बात को भी आप विशेष महत्व दें कि ज्ञान और योग की रुचि कभी कम न हो, कुमारों के जीवन में कम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी शिकायत है, किसी संघ में आकर या कहीं निराश उदास होकर या कहीं टकराव में आकर, टकराएंगे बहनों से और छोड़ेंगे भगवान का ज्ञान, ऐसा ही हो रहा है ना? तक लड़ाई किसी से होगी, छूटेगा कोई। बाबा कहा करते थे साकार में कि मेरे से तो तुम नहीं लड़े हो ना, तो मेरे सामने तो आओ, ठीक है किसी बच्चे से लड़ाई हो गई तुम्हारी, हो गई, लेकिन मेरे से तो नहीं रूसो ना, रूसते हैं भगवान से। इसलिए इस बैलेंस के लिए ज्ञान योग का शौक बना रहे, रुचि बराबर बढ़ी रहे, उसके लिए अध्ययन और मनन, यानी आप सभी को स्वयं की पालना स्वयं करना ही सीखना है, अपनी पालना स्वयं करनी सीखनी है। ये कुमारों की शिकायत है कि उन्हें पालना नहीं मिलती है। ठीक बात है आप सभी की, सभी जगह पालना करने वाले लोग नहीं होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं, लेकिन जो आत्मा स्वयं की स्वयं पालना करना सीख जाती है वो तो दूसरों की पालना करने वाली बन जाएगी, उन्हें किसी की पालना की आवश्यकता नहीं रहेगी। और स्वयं की पालना करने का तरीका है अध्ययन और मनन। तो आप इस भट्टी से एक वरदान ले जाएं बाबा से, मनन शक्ति को बढ़ा देना है। और उसके लिए अव्यक्त मूल्यां हैं आपके पास, किताबें हैं, साकार मूल्यां भी हैं, पढ़ना और कुछ लिखना। कई भाइयों से लिखना नहीं आता है, आता माना लिखने का अभ्यास नहीं है, विचार नहीं चलते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि नए विचार मन में आए तब मैं लिखूं तो कभी नहीं आएंगे। मान लो आप सोच रहे कि मैं संतुष्टता पर लिखूं कुछ, अब क्या लिखूं, संतुष्ट रहना चाहिए, इसके आगे कुछ ख्याल आ ही नहीं रहा। तो आप अपने वो मनन की जो इच्छा है उसको एक तरफ रख देंगे और वो शक्ति कम रह जाएगी। आप डायरी लो, पेन हाथ में लो और शुरू करो, बाबा को याद करो, आह्वान करो, अपने को संकल्प दो, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, सब कुछ भरा हुआ है अंदर, जो सुना वो भर गया है, सुप्रीम टीचर है, भगवान मेरा टीचर है, इस नशे के साथ कलम चलाओ तो पहले दिन एक पेज लिखेंगे, दूसरे दिन दो पेज, तीसरे दिन तीन पेज और सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मनन शक्ति को अवश्य बढ़ाना है, इससे ही आपके लौकिक कार्यों में अलौकिकता बनी रहेगी। क्यों? कि जो चीज आप मनन करके लिखेंगे, बाबा की बात आपको याद आएगी, वो आप लिखेंगे, वो आपको ज्यादा समय याद रहेगी सारा दिन में। और जब आपको कुछ अलौकिक बात याद रहेगी तो जीवन में अलौकिकता समाने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि जैसे ही धंधे में गए और फिर धंधा पूरी तरह मन बुद्धि पर छा गया, फिर बाबा किधर है और ज्ञान किधर है वो अलग दूर की चीज हो गई। बस इस एक बात को जरा सा समझ लें कि अगर मनन करेंगे, कुछ अपने हाथ से लिखेंगे और जरा अटेंशन दें कि शुरू शुरू में कि भाई पांच बार इस चीज को जरा दिन में याद करना है, तो वो ज्ञान का एक संकल्प, वो नशे का एक संकल्प आपको धंधे के प्रभाव से मुक्त रखेगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस कर्म में मनुष्य रुचि ले रहा है, जिसको अपने जीवन का आधार समझ रहा है, जिसको उसने कमाई समझा हुआ है ही वो कमाई, उसका प्रभाव मन पर न पड़े ये इतना सहज नहीं है कि हम कह दें कि कर्म का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए और आप भी कह दें कि नहीं आना चाहिए, हो जाएगा। क्योंकि उससे जीवन जुड़ा हुआ है, उससे हमारे संकल्प जुड़े हुए हैं, उससे हमारी जीविका जुड़ी हुई है। इसलिए आवश्यकता इस चीज की है कि अलौकिकता में कुछ ऊंचा पाने का लक्ष्य साथ साथ चलता रहे, वो भूले नहीं। तो ऊंचा लक्ष्य क्या हो, क्या ऊंचा लक्ष्य हो जीवन का? बाप समान एक बहुत बड़ा और आगे का लक्ष्य हो गया। कुछ ऐसे लक्ष्य जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, बोलो मैं जैसा करूंगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको एक, आप विचार करें कि आप ये सोच लें कि जो भी लोग मेरे पास आएंगे, आज आपकी दुकान है तो वहां आएंगे, आप नौकरी में हैं तो वहां भी कुछ लोग देखते हैं, उनके साथ आपको बैठना है, मुझे बाबा का साक्षात्कार मूर्त बच्चा बनकर रहना है। ऊंची कॉन्शियसनेस हो गई, ऊंची स्मृति हो गई। ये ऊंची स्मृति अगर आप इसको पांच बार रिवाइज कर लें, आठ घंटे की ड्यूटी में पांच बार रिवाइज कर लें, तो आपको कुछ विशेष अनुभव होगा। मान लो आपने ये सोच लिया कि मुझे तो सबको फरिश्ते का स्वरूप दिखाना है, मैं मनुष्य हूं ही नहीं, मैं तो फरिश्ता हूं, ये धंधा भी कर रहा हूं तो फरिश्ता कर रहा हूं। और इस स्मृति को पांच सात बार आप रिवाइज करो, इसकी आवश्यकता है कि आप रिवाइज करो। ऐसे नहीं कि जब दुकान खोली तब तो याद रहा और फिर शाम को याद आए, आपको इतना अटेंशन जरूर देना पड़ेगा कि पांच सात बार आपको याद आ सके। आप कुछ उसके स्थूल साधन बना लो, आपकी पेटी हो पैसे डालने की, उसमें कुछ डाल लो, उसको देखते ही आपको याद आए, कोई चित्र रख लो। तो हमें अपने संपूर्ण पुरुषार्थ में इस एक सिद्धांत को, जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी स्मृति है, वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाएगा, पूरी तरह से अनुभव कर लेना चाहिए। आप चाहे जिस भी कार्य में रहते हो, आप ये तो कह सकते हैं कि कार्यों में रहते हुए योग थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल कठिन नहीं है कि आप किसी ऊंची स्मृति में रह पाए। आपने अपने को ये स्मृति दे दी, जैसे ही आप अपनी दुकान खोली या ऑफिस में गए और पहला संकल्प ये कर लिया कि मैं अवतार हूं, रोज आप वही संकल्प करने लगो, आप प्रयोग करके देखो एक मास, जैसे ही आप अपना कार्य शुरू करो ये स्मृति दे दो कि मैं तो अवतार हूं, और इफेक्ट देखो क्या प्रभाव पड़ता है इस एक संकल्प का। संकल्प ही हमारे वातावरण का निर्माण करते हैं, एनवायरमेंट्स बनाते हैं, वहां भावनाएं पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं, उनका व्यवहार बदलते हैं। ऐसी ऊंची स्मृतियों की 5-7 बातें आप रख लो, चाहे एक को एक मास करो, चाहे रोज रोज नहीं नहीं कर लो, जैसे आजकल भी बाबा की स्मृति के पॉइंट सुनाए जा रहे हैं, उनमें से आप छांट लो जो आपको बहुत प्रिय हो, और इस एक बात को भी अच्छी तरह महसूस कर लें कि जो चीज हमको प्रिय लग रही है वो क्यों प्रिय लग रही है। मान लो किसी को प्रिय लगता है कि मैं फरिश्ता हूं, भाई ये संकल्प सुनते ही मुझे मजा आ जाता है। किसी को लगता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये संकल्प सुनते ही बहुत रस आ जाता है। किसी को कोई दूसरी बात अच्छी लगती है, जो चीज प्रिय लगती है क्यों, क्यों? कल पहले हम उसका स्वरूप बने थे, इसलिए वो हमें प्रिय लग रही है। इस सिद्धांत को समझते हुए जो भी अपने को प्रिय लगता हो बस उसे घोट दो। सभी कुमार है ना, घोटने की अच्छी आदत है, अभी स्टूडेंट लाइफ से आए हैं, उसे रिवाइज कर लो, उसके पीछे पड़ जाओ, और आप पाएंगे जल्दी आप उसका स्वरूप बन जाएंगे। और इन्हीं ऊंची स्मृतियों की आने वाले समय में हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। तो छांट लें, आप लिस्ट बना लें अपने पास, उससे एक छांटे, तीन छांटे या पांच छांट ले, और उन पर अभ्यास करें। तो क्योंकि कल पहले वही हमारा स्वरूप बना है, अब जल्दी जल्दी वो हमारे जीवन में धारण हो जाएगी। इसके अलावा अपने कार्यों में बिजी रहते हुए अपनी दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान रखना, और दिनचर्या में सबसे पहली दिनचर्या सवेरे के समय को पूरी तरह सफल करना। केवल उठ जाना ही नहीं, लेकिन उठकर हमने अपने मन को भर लिया, आत्मा तैयार हो गई आज के लिए, इतनी आनंदित हो गई कि उसको लग रहा है कि बहुत कुछ मिल गया, और इसके लिए क्या करेंगे, बाबा के महावाक्य, सवेरे उठकर संकल्प शक्ति का प्रयोग करो। आपने कभी सुना हो ये बात, बाबा की अमृत वेले की पॉइंट्स बहुत आई थी। ये भी एक पॉइंट है कि संकल्प शक्ति का प्रयोग करो सवेरे उठकर, अर्थात ऐसे संकल्प अपने पास रचो जिससे मन आनंदित हो जाए। संकल्प, व्यर्थ संकल्प को रोकने का भी यही तरीका है, और योग को आनंदकारी बनाने का भी यही तरीका है कि ऐसे संकल्प हम रचना सीख लें जो हमको आनंदित कर उठें, मन भरपूर हो जाए। और वो संकल्प कहां से आएंगे हमारे पास, कहां से आएंगे, मुरलियों से। तो मुरली में जो जो संकल्प आपको बहुत ही नशा चढ़ाए, ऊंची स्मृति दिलाए, कर्तव्यों की स्मृति दिलाए, भाग्य की स्मृति दिलाए, उसको नोट कर लो बड़े अक्षरों में, ऐसे नहीं कि एक पेज पे सारे लिख लेने छोटे छोटे अक्षरों में, एक पेज पे दो ही महावाक्य लिखो बस, और उनको पढ़ते रहो, सवेरे उठ के पढ़ लो चाहे, तो वही बात नए संकल्प रचने में मदद करेगी और सवेरे का समय शक्तिशाली हो जाएगा और सवेरे का फाउंडेशन ही दिन को अलौकिकता का अनुभव कराएगा। और सवेरे अगर कुछ नहीं मिला, उठ तो गए थे, योग नहीं लगा या नींद आती रही या व्यर्थ संकल्प आते रहे, तो वहीं से क्योंकि हमने स्वयं को अलौकिकता में नहीं बांधा तो सारा दिन लौकिकता का प्रभाव हमारे ऊपर हावी रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उसमें थोड़ी कमी रह गई है तो दूसरा बल कहां भरेंगे, मुरली के समय, क्लास के समय। ये नहीं कि लेट आ रहे हैं, बिजी थे, ढीले ढाले आ रहे हैं, या क्योंकि मुरली सुननी इसलिए सुन रहे हैं। क्या करें जो मुरली रस दे, मुरली रस दे जीवन को, पूरी एकाग्रता से सुने, जो बात कही जा रही है उसको साथ साथ अनुभव करें। अगर किसी के पास एकाग्रचित्त स्थिति नहीं होती मुरली सुनते, तो वो एक दो स्थूल चीज अपना ले कि जो जो बाबा कह रहा है ना, साथ साथ रिपीट करो मन में, करके देखना अभ्यास। आप ये 15 मिनट आप करके देख कि जो बाबा ने कहा उसको रिपीट कर लो, अगला सुनते हुए भी अगली लाइन, और देखो कि आपका एकाग्रचित्त मन किस तरह मुरली में रस ग्रहण करता है। ऐसे ही एक स्थूल साधन में आपको बता रहा हूं, किसी की एकाग्रता बिल्कुल ही कम हो, न योग में एकाग्र होते हो, मुरली सुन रहे हो यहां और बुद्धि पिछले पॉइंट्स पर हो। कईयों को ऐसा होता है अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, पढ़ यहां रहे हैं और सोच आगे की पॉइंट के बारे में रहे हैं, नजर अगली पॉइंट पर जा रही, फास्ट मन बहुत तेज गति से काम करता है। इस तेज गति को रोकने का एक साइकोलॉजिकल स्थूल साधन कि आप 10 से गिनती गिनो उल्टी, 100 से गिनो, ज्यादा ही आपका तेज मन हो ना तो 100 से गिनो, और अगर 5 मिनट में आप 1 तक आते हैं तो अगली बार सोचो 4.5 मिनट में आना है, फिर सोचो 4.5 मिनट में आना है, फिर 4 पर आओ, तो आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कि 100 के बाद क्या बोलना, 99 के बाद क्या बोलना, कंसंट्रेशन। फिर आप करो इसको स्लो करो, अब 10 से 1 तक आ सकते हैं, 10 से 9 कहने में 5 सेकंड लगा दो, देखो ठहरती है 5 सेकंड तक आप वहां। ये स्थूल साधन है और मनोवैज्ञानिक तरीके जो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा देंगे। तो इस तरह मुरली के द्वारा रस लेते हुए फिर आप आगे बढ़ें। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो, किसी को नौकरी पर जल्दी जाना हो 7 बजे, या किसी और कारण से, या किसी की शिफ्ट वाइज ड्यूटी हो जिसका अमृत वेला मिस होता हो, तो वो इसमें ज्यादा नाजुक ना बने कि भाई हमें तो 2 से हमारी ड्यूटी है, हमारा अमृत वेला ड्यूटी में चला जाता है, या दूसरे दिन 2 बजे खत्म होती है, हमारा सोने में चला जाता है, तो उसमें ज्यादा नाजुकता से सोचने की आवश्यकता नहीं। जब आप उठे, मान लो 2 बजे आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है, अमृत वेला है 2 बजे, आप बाबा से रू रिहान करके, बाबा को याद करके आधा घंटे के बाद सो जाएं, जब उठे फिर अपना अभ्यास चालू करें, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ मिस हो गया। कई लोग इस बात से बड़े डिस्टर्ब रहते हैं कि हमारी तो शिफ्टिंग ड्यूटी है तो हमारी तो दिनचर्या सेट होती नहीं, हम क्या करें। अपनी दिनचर्या को स्वयं सेट कर लो उस अनुसार जिस अनुसार आपकी ड्यूटीज हैं, आपके लौकिक कार्य है। ये नहीं कि भाई बाबा ने तो कहा कि सवेरे ही योग होगा 4 बजे ही, और हमारा तो धंधा है उस टाइम, हमें तो नौकरी पे जाना, मशीन चलानी होती है फैक्ट्री में, हम कैसे योग करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप इवनिंग का टाइम योग में अच्छा बिताओ, जैसे अमृत वेले का बहुत महत्व है वैसे ही शाम के समय का भी बहुत महत्व है। जो प्राप्तियां उस समय होती हैं वही प्राप्तियां उस समय भी होती हैं, इसलिए उस समय को अगर आप भरपूर करेंगे शाम के समय को, तो आपको अगर धंधेवश या कभी आप बीमार हो गए, किसी कारण से अमृत वेला मिस हो गया, मजा नहीं आया, तो श्याम का आनंद आपको भरपूर करेगा। इसके बाद जब आप अपनी ड्यूटीज पर जाते हैं, तो जिसके पास समय हो वो नियम बना ले कि कि 10 मिनट बाबा को याद करके ही जाना है। कम समय हो थोड़ा कम कर सकते हैं, पर 10 मिनट का आप लक्ष्य बनाओ कि योग युक्त होकर स्व स्थिति बनाकर कर्म पर जाएं, और फिर देखो कि स्व स्थिति काम में आने वाली परिस्थितियों को कैसे बदलती हैं। ऐसे ही जब आप अपने धंधे से आए तब भी नियम बना ले, भले आप थके होंगे, उस थकान को मिटाने का आधार, जैसे आप समझते हैं चाय पिए आते ही नहा लें तो थकान मिट जाएगी, वैसे ही समझे 10 मिनट बाबा के पास चले जाएं तो थकान मिट जाएगी। ऐसा लक्ष्य लेकर जो भी सारे दिन का बोझ मन पर आ गया हो वो बाबा के हवाले कर दो और फ्रेश हो जाओ 10 मिनट में। अशरीरी होने का थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और बीच का जो ये समय है, लेकिन इससे पहले सभी कुमार जो भोजन अपने हाथ से बनाते हैं, हाथ उठाएं जरा, बहुत सारे हैं तो ठीक है, भोजन बनाने के समय को 2 घंटे तो लग जाएगा ना सारा दिन में, खाना बनाना है 1 घंटा 2 घंटा, इस समय को तपस्या का समय बना लो। ये तो आपका अपना समय है ना, और इसमें जरा निश्चिंत होके लगो, ये नहीं काम यहां कर रहे हो और भागने की जल्दी है कहीं और, ऐसा नहीं। आप ये निश्चित करो इस समय को कि ये हमारा स्पेशल तपस्या का समय है, इसमें ना हम और धंधों की बात सोचेंगे ना और तरफ अपनी बुद्धि को ले जाएंगे, गीत बजा लो, अच्छे वाइब्रेशंस में बैठो, या उससे पहले 3 मिनट योग लगा के शुरू करो, कुछ अच्छे संकल्प करो, बाबा से रूरियान करते रहो, या ऐसा सोचो कि हमारे इस किचन के ऊपर हमारे ऊपर बाबा की रेज पड़ रही है, ऐसी फीलिंग में होकर आप भोजन बनाएं, तो भोजन का प्रभाव बहुत जबरदस्त है, क्योंकि भोजन सीधा हमारे ब्रेन को प्रभावित कर रहा है, इसलिए हमारा मन बुद्धि और हमारी स्थिति उससे बहुत जल्दी श्रेष्ठ होती है। बाबा ने ब्रह्मा भोजन के लिए, योग युक्त भोजन के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है। ये कहा है कि अगर तुम योग युक्त होकर भोजन बनाओ और योग युक्त होकर खाओ तो 50% प्योरिफिकेशन आत्मा का हो जाएगा, 50% पावन बन जाएगी आत्मा, इतना बड़ा महत्व है इसका। कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, प्योरिटी को बढ़ाने का भी ये तरीका है और जीवन को अलौकिक बनाने का भी ये तरीका है। तो जल्दीबाजी में भोजन न बने, उतावलापन हो, जाना है, अगर आपके पास 15 मिनट भी हैं, ये एक स्थिति होनी चाहिए हमारी कि अगर हमारे पास 15 मिनट भी हैं तो 15 मिनट तो हम शांति से रहें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई 15 मिनट है, 15 मिनट के बाद हमें ट्रेन पकड़नी है, तो 15 मिनट भी बड़े हाहू में बिता देते हैं जैसे अभी ट्रेन आ गई हो। ये आदत बहुत मनुष्यों को होती है कि अगर उनके पास थोड़ा टाइम है, आप किसी के घर गए और टाइम केवल 10 मिनट का है और आप जाते ही कहने लगे भाई देखो मेरे पास केवल 10 मिनट का टाइम है बस, तो क्या होगा, 10 मिनट का भी फायदा आनंद नहीं ले सकेंगे। और आपको पता है आपके पास 10 मिनट है तो 10 मिनट वहां शांति से बैठ के जो उन्हें देना है, कोई मनोरंजन है, कुछ देना है, कुछ सिखाना है, वो सिखाएं शांति से। तो जितना कम समय भी हमारे पास हो उस कम समय का उपयोग भी शांति से कर लेना, ये जीवन की एक बहुत अच्छी कला है। तो इसके बाद जब आप कर्म क्षेत्र पर हैं तो ऊंची स्मृतियों के साथ, जो पहले हमने बात कही कि दुकान का दरवाजा खोलते ही ऑफिस की टेबल पर बैठते ही, वो एक जो ऊंची स्मृति का पॉइंट है उसको अपने मन में ले आओ, मैं फरिश्ता हूं, इन मनुष्यों जैसा नहीं, इनसे बिल्कुल अलग। तो दृष्टि में भी अलौकिकता रहेगी, बोल में भी अलौकिकता, वृत्ति में भी अलौकिकता, कर्मों में भी अलौकिकता। अगर कुछ उल्टा सुलटा हमसे होगा भी तो फौरन हमें टच होगा कि नहीं मैं तो फरिश्ता हूं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। और ऐसे चेकिंग होते होते जल्दी ही अलौकिकता हो जाएगी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, अगर कोई कर्म योग पर ध्यान दे दे, कर्म करते हुए योग युक्त स्थिति अगर कोई बनाना सीख ले तो सारा जीवन अलौकिक। और इसके साथ, इसको हम ले रहे हैं पीछे, इसके साथ हमारे व्यवहार में विशेष रूप से बहुत सारे कुमार अकेले चलते हैं, माँ बाप ज्ञान में नहीं है, माँ बाप फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए या और बहुत सारी खान पीन की बातों के लिए तंग किया जा रहा है आपको, तो इस बात को आप अपनी अच्छी वाचा के द्वारा सिद्ध करें, हल करें, खुद गुस्से में आके नहीं, जोश में आके नहीं। आप में से कई ऐसे भी होंगे जो इंडिपेंडेंट है, अपना धंधा करते हैं, अब अपने माँ बाप को कह सकते हैं गुस्से से कि तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं, हम अपना कमाते अपना खाते हम जैसे चाहे जिए, कह तो सकते हैं, लेकिन ये बात सदा के लिए सुखदायी नहीं रहेगी। इसलिए विवेक का बैलेंस रखते हुए अच्छे बोल के द्वारा, देखो आपके बीच एक कुमार बैठे हैं, अभी गए हैं उधर डॉक्टर्स के उसमें, उन्होंने हमें बताया कल आए तो वो डॉक्टर बन के यहाँ आ रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, दूर के हैं, उनके बूढ़े माँ बाप रोने लगे बेचारे, भाई एक बच्चा है वो भी जा रहा है बहुत दूर, पता नहीं कब कब मिला करेगा, और कोई है नहीं। तो वो बता रहा था मैंने उन्हें कैसे खुश किया, तो उसने बताया कि हमारे माँ बाप हमें बचपन से ही कहा करते थे कि बेटा जिस माँ बाप ने जन्म जन्म पुण्य किए हो उनका बच्चा वैरागी होता है, तो उसने याद दिला दिया उनको। तो कहा मैंने याद दिलाया कि पिताजी आप पूरा जीवन बचपन से मुझे पढ़ाते रहे और मैं आपका बच्चा वैरागी हूँ और योगी हूँ, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके जन्म जन्म के पुण्य हैं। और बातों के द्वारा, रियल बातें, उसने कहा जन्म से आप मुझे कहते आ रहे थे कि बेटा वैरागी बनना, योगी बनना, और अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि पिताजी माताजी वैरागी बनो, योगी बनो। तो अच्छी वाचा के द्वारा, अपने अच्छे प्रभाव के द्वारा, अच्छी स्थिति के द्वारा उनको जीत लिया, और उन्होंने कहा आप खुशी से जाओ, हम भी आया करेंगे वहीं। तो अपनी अच्छी स्थिति के द्वारा अपने लौकिक संबंधों की टेंशन को दूर करो, वाचा के जोश से नहीं, वो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई आप इंडिपेंडेंट है, आपको कौन बांध सकता है, लेकिन वो हथियार तब अपनाना है जब और कोई हथियार काम न करे, वो फाइनल हथियार लास्ट के लिए रख छोड़ो ब्रह्मास्त्र लेकिन उससे पहले अपनी अच्छी स्थिति के द्वारा, अच्छे बोल के द्वारा आप सबको जीत सकते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे आपके सेवा लौकिक सर्विसेज में आपके साथी हों, ये आपका बिजनेस है उसमें आपके पास आने वाले लोगों, हमारी स्थिति का प्रभाव और इसके साथ हमारी भावनाओं का प्रभाव, इस बात को आप अंडरलाइन कर लें इस तपस्या वर्ष में कि हमारी भावनाओं का बहुत जबरदस्त प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। भावनाएं अपनी दूषित नहीं होने देनी है, कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो हमारे लिए, बाबा ने एक मुरली में कहा था रावण जैसा भी दुश्मन हो तुम्हारा तो भी तुम्हें उससे दुश्मनी का भाव नहीं रखना है, ये भी हमारी एक तपस्या है, असली तपस्या, हमारे अलौकिक जीवन की सिद्धि कि हम ये सीख चुके हों कि हमारी भावनाएं नहीं बदलेंगी, कुछ भी बदल जाए हमारी भावनाएं तो अच्छी ही रहेंगी, उनका फ्लो, उनके द्वारा मिलने वाला सुख, उनके द्वारा मिलने वाला सहयोग सदा दूसरों को प्राप्त होता ही रहेगा। तो भावनाओं को भी नहीं बदलना है और वाचा का बल इसका प्रयोग करना है। मुझे याद रहती है बाबा की बात कि जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं उनमें तीनों बल होंगे, मनसा का बल, लगेगा कि संकल्प बड़े बलशाली हैं, वाचा का बल, बोल बड़े शक्तिशाली हैं, और कर्म का बल, तीनों बल से सजी हुई आत्माएं वो होंगी। तो वाचा का बल प्रयोग करना है अपनी व्यवहारिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए। तो कर्म योग की बात पर हम आ जाएं, कर्म में मनुष्य निरंतर है और कर्म योगी जीवन बनाने के लिए जो कई आत्माओं ने एक संकल्प अपने को दिया होता है, बहाना कि हम बहुत बिजी हैं, कर्म में हम इतने बिजी हैं कि उसमें योग होना संभव ही नहीं है, इस कारण को हटा दे। कोई भी व्यक्ति कर्म में इतना बिजी नहीं है, कहां है मनुष्य बिजी, व्यर्थ में बिजी है, व्यर्थ के कारण भी जिए, चाहे वो बाह्य मुक्ता की व्यर्थ हो चाहे वो संकल्पों का व्यर्थ हो। जब संकल्पों की गति बहुत फास्ट है, बहुत तेज है, तो कर्म में मनुष्य को लगता है कि बहुत तेज गति है, चैन ही नहीं है, भाग दौड़ कर रहे हैं, शांति ही नहीं है जैसे। तो ये संकल्प हटा दो कि हम कर्म में बहुत बिजी हैं। कर्म हमारी क्रिएशन है, रचना है कर्म हमारी, और अपनी रचना को अगर हमने अपने अधीन न किया तो विश्व को हम अपने अधिकार में कैसे लेंगे। आप विचार करें, हम चले हैं विश्व महाराजन बनने, चैलेंज किया हमने दुनिया को, विश्व को हमें कंट्रोल करना है, प्रकृति को हमें कंट्रोल करना है, यहां तक कि विनाश को भी हमें ही कंट्रोल करना है, और हम अपने कर्म को कंट्रोल न कर पा रहे हो, कर्म हमें बहा लिए जा रहा हो, कर्म हम पर हावी हो गया हो, तो कोई मानेगा कि ये विश्व को कंट्रोल करने वाली आत्माएं हैं। तो हमें कर्म को अपने वश कर लेना है, अपने अधीन कर ले, ऐसा कर्म करें कि कर्म आगे आगे भागे, ये नहीं कि कर्म हमें भगा रहा हो। अपने कंट्रोल में कर लो, अपनी अच्छी प्लानिंग करो, कौन सा कर्म किस तरह कैसे करना है। कई लोग हमने देखे, थोड़ा सा काम सारा दिन बिजी, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, थोड़ा सा काम होगा और लगेगा बहुत बिजी रहते, उन्हें भी लगेगा दूसरों को भी लगेगा। और कुछ लोग बहुत काम करते भी बिल्कुल जैसे फ्री है। ये कर्म करने की अपनी अपनी कला है। कर्म को चुस्ती से खत्म कर देना, कर्म को हल्केपन से खत्म कर देना। कर्म में अगर हम सरलता ले आए तो कर्म जल्दी खत्म हो जाते हैं। हमें ये सिद्धांत बाबा का और मनोविज्ञान का अच्छी तरह स्पष्ट रहे कि हमारे कर्म को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है हमारी संकल्प शक्ति। संकल्प उलझे हैं, कर्म में देर लगेगी। संकल्प सीधे हैं, कर्म आधे टाइम में हो जाएगा। अब भोजन बनाने में देख लें इसको, भोजन बनाना तो स्थूल काम है ना, वो आग पे ही पकेगा, लेकिन अगर आप योग युक्त अच्छे संकल्पों में भोजन बनाए तो जो काम 40 मिनट में होता है वो 30 में हो जाएगा, फिर वो 25 में होने लगेगा। कर्म की समय सीमा कम होने लगेगी संकल्प बल के द्वारा। तो संकल्पों को सरल चित्त करना है, और फिर कर्मयोग करने के लिए एक संकल्प अपने मन में दृढ़ कर देना है कि हम कर्म कर रहे हैं किसके लिए, किसके लिए कर रहे हैं कर्म। लौकिक कर्म आप कर रहे हैं, आपने एक दुकान खोली हुई है, उसमें आपको कमाई करनी, किसके लिए कर रहे हैं? ठीक ठीक बोलो, पेट के लिए, ठीक बोल रहे हैं ना, यही बात प्रैक्टिकल है, शरीर निर्वाह। अगर कर्मों में ये भावना दृढ़ हो जाए कि कर्म बाबा के प्रति है, उसके यज्ञ प्रति है, भले आपको लौकिक परिवार पालना हो अपना किसी को, लेकिन अगर ये भावना हो जाए कि लौकिक परिवार भी उसका ही है, मेरा नहीं, तो बाबा की बहुत मुरलियां आपने सुनी होंगी कि जो बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये सब कुछ बाबा का है, वो मानो बाबा के भंडारे से ही खाते हैं, उनका भोजन ब्रह्मा भोजन ही बन जाता है, और उनके भंडारे सदा भरपूर, अंडरलाइन कर लें इसको आप। और जो ये समझ रहा है मेरी दुकान मेरे परिवार के लिए कमाई, ऐसे करूं या ऐसे करूं, ऐसे ज्यादा कमाऊं, उसके भंडारों में सदा ही कठिनाई होती रहेगी, भरपूर तो रहेंगे लेकिन मजा नहीं आएगा। तो क्यों नहीं हम बाबा के इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई कर दें? निश्चय पर आपकी क्लास हो चुकी है। अगर किसी को ये निश्चय रहे कि भगवान साथ दे रहा है तो क्या उसे कहीं भी कोई चिंता होगी? रोज चिंतन करने की बात है ये, भगवान साथ दे रहा है, हजार भुजाओं सहित सदा उसने साथ देने का वायदा कर लिया है, कहा कि तुम चिंता ही न करो, मैं जो बैठा हूं तुम्हारे लिए। और हमें ये बात भूल ही जाती है, ये निश्चय भूल जाता है, याद रहते भी सोचते हैं पता नहीं मदद होगी या नहीं। तो कर्म क्षेत्र में चिंताएं ऐसा जाल बुन लेती हैं कि अलौकिकता तो छोड़ो, लौकिकता का भी आनंद नहीं रहता। इसलिए अपने विचारों को सरल कर देना, बाबा के भरोसे जीना। बाबा कोई छोटी चीज है क्या? उसकी चुटकी बजाते ये संसार नर्क से स्वर्ग बन सकता है। बाबा ने कही है ये बात। बाबा चाहे तो आंख झपकते ही संसार को बदल दे, लेकिन वो करना नहीं है, उसे बनाना है हम सबका भाग्य। ऐसी सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ हो और हम चिंताओं में, बोझ में, परिवार का क्या होगा, इस समस्या का क्या होगा, इसमें लटके रहें, तो ये हमारा निश्चय कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। लोग भी नहीं मानेंगे कि हमें भगवान मिला। वो कहेंगे ना, इन्हें भगवान मिलता होता तो ये निश्चिंत जीवन जीते। भगवान इन्हें मिला, इनको तो हमसे भी ज्यादा चिंता, शायद भगवान चिंताओं की गिफ्ट लाया हो, कहेंगे ना ऐसे। तो अपनी सारी चिंताएं और बोझ लौकिकता से बाबा के हवाले कर देने से हमारा ये जीवन अलौकिक बन जाएगा। तो कर्म योग की सीढ़ी पर चढ़ते चलें। कर्म का बंधन अगर है, कर्म अगर बोझ है, तो कर्म योग नहीं हो सकता। कर्म में हम हल्के हो जाएं, कर रहे हैं बाबा के लिए, वही रेस्पॉन्सिबल है, अच्छा फल भी वही दे देगा, इस निश्चिंतता से, इस खुशी के साथ कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़े, तो बाबा से बुद्धि लगी रहेगी और हमारा जीवन लौकिक से अलौकिकता की राह पर तेजी से चलेगा। ठीक है, ओम शांति। ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, सारा दिन इस पे चर्चा करते रहे, लेकिन सार रूप में और आगे आप चर्चा करें। और मैंने आपको ध्यान दिलाया, मनन शक्ति को बढ़ाएं, ठीक है ना, इसको भूले नहीं। ये जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, इस अलौकिक जीवन की। हाँ, इसीलिए तो बाबा ने कह दिया कि ड्रामा ही ऐसा है कि सभी आत्माओं को उसमें सहयोगी बनाकर उसका भाग्य बनाना है, लेकिन बाबा के पास वो शक्ति है अवश्य। जो शक्ति वो हम सब में बटकर स्थापना का कार्य पूर्ण करती है। कहने का अर्थ ये कि इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है तो हमें बेगमपुर का बादशाह होके जीना चाहिए। छोटी बातों में परेशान, चिंताओं में, बोझ में नहीं आना चाहिए, ये मतलब है उसका। अमृत वेले योग करने से आपको दिन में सुस्ती आती है, ये बहुतों की प्रॉब्लम है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, हाँ, इसके लिए आप बीच में आधा पौना घंटा रेस्ट का समय ले ले, बीच में, चाहे दोपहर में हो या अगर आपके पास क्लास के बाद समय हो। मान लो 8 बजे आप घर पहुंचे, 8 बजे दुकान खोलते, तो बीच में आपको थोड़ा समय ले लेना पड़ेगा, क्योंकि सवेरे उठने से हमारी शारीरिक शक्तियां भी प्रयोग होती हैं। सवेरे का समय प्रकृति के अनुसार तो रेस्ट के लिए है, और ब्रेन की शक्तियां प्रयोग होती हैं, और सारा दिन भी आप ब्रेन की शक्तियों को प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए थकान होना बड़ा स्वाभाविक सा है। और उसमें भी अगर किसी का शरीर थोड़ा कमजोर है, किसी को बीमारी है, तो उसको थकान होती है। चाहे आप, अगर आपको ज्यादा थकान हो तो क्लास से पहले आधा घंटा रेस्ट ले लें। मतलब इस बात का भी आप ध्यान रखें कि सवेरे उठने के बाद आपको थकान के कारण दिन में चिड़चिड़ापन न हो, क्योंकि अगर थकान हो गई तो चिड़चिड़ापन होगा। इसलिए रेस्ट का कहीं भी आधा घंटा भी आप एडजस्ट कर लेंगे तो बहुत सहज सारा दिन बीत जाएगा। वो आपको स्वयं देखना होगा कहां आप। कुमार जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान पर आप दूसरा क्लास तो होगा ही, प्योरिटी पर भी होगा, तो निश्चय बुद्धि भी तो आखिर में ही होंगे। आप देख लें कितने निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि अगर हम सब अब हो तो एक भी व्यर्थ संकल्प चलने चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब बैठा ही भगवान है, हम तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशान तो रहते हैं ना, निश्चय के बाद भी परेशान है। संपूर्ण निश्चय एक्चुअली बहुत थोड़ी आत्माओं को ही होता है, बहुत थोड़ी आत्माओं को, कहें तो 8 को ही, जो संपूर्ण निश्चय के आधार पे मगन हो जाते हैं बाबा में, जो संपूर्ण समर्पित भाव में स्थित हो जाते हैं। बाकी सभी तो निश्चय का अभ्यास ही करते हैं। तो ये ठीक है कि जब पूरा निश्चय हो जाएगा, योग भी पूरा हो जाएगा। ज्ञान स्वरूप जीवन कैसे हो सकता है, यही चर्चा हुई कि ज्ञान का पहले अध्ययन होता रहे, फिर उस पर मनन होता रहे, मनन होने से वो हमारी स्मृतियों में समाता रहेगा और फिर वो कर्म में आ जाएगा, हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। पहले ज्ञान हमारे विवेक में समा जाए। देखिए, ज्ञान आप सुन रहे हैं, ज्ञान एसेंस बन के बुद्धि में समा रहा है, बुद्धि उसको ग्रहण कर रही है, विवेक के रूप में वो प्रकट हो रहा है और कर्म क्षेत्र में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, कर्म पर हम उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसलिए ज्ञान को जितना हम बुद्धि में समाएंगे उतना ही जीवन ज्ञान स्वरूप बनेगा, यह है इसके पीछे थ्योरी। तो ज्ञान को बुद्धि में समाने के लिए बुद्धि को स्वच्छ रखना, एकाग्र रखना, मुरली उसी रूप से सुनना और मन को मनन देना, संकल्प देना, ताकि वो इधर उधर जाके बुद्धि को भी दूषित न करे, तो जीवन ज्ञान से। देखिए, अगर आप उस करप्शन को की चेन को तोड़ते हैं तो तब आप पर उसका ज्यादा असर आता है, या उसमें आप रहते हैं तब असर आता है, ये आप देख लें। हाँ, देखिए, इसमें ये है कि अगर आप उसको तोड़ के अपनी स्थिति को सेफ रख सकते हैं तो आप तोड़ दीजिए। अपनी स्थिति सेफ रखना जरूरी, ऐसे नहीं तोड़ के उलझ जाए मन और जीवन, उसमें आपको तोड़ने से कोई फायदा नहीं। मान लो आपको उस चेन में से 500 रुपए मास में मिल जाते हैं और आप उसको तोड़ रहे हैं, 500 तो आपने छोड़ दिए लेकिन संकल्प भी आपके बहुत जा रहे हैं, उसमें फायदा नहीं। लेकिन अगर मान लो वो चेन कायम है और 500 आपको मिल रहे हैं और आप अपनी स्थिति को अच्छा बनाते जा रहे हैं और आपको ये संकल्प है कि ये बुरी कमाई है भाई, इससे मेरी स्थिति पर, मेरे कर्मों पर कुछ बुरा असर आ जाएगा, तो उसको आप अपने भोजन में प्रयोग न करें, ये आप ध्यान दें। किसी भी तरह उसको आप प्रयोग कर दें, सेवाओं में, दान में, कोई गरीब स्टूडेंट है उसको पढ़ने को पैसा नहीं, उसको आप मदद कर दें, किसी को भोजन खिलाएं, जो आप करना चाहें, खुद उसका भोजन न खाएं तो आपकी स्थिति पर उसका असर नहीं आएगा। हैं? सेंटर की सेवाओं में भी आप ये ध्यान दें कि इस तरह का बहुत सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, लिटरेचर में आप लगा दें, लिटरेचर में आप लगा दें, क्योंकि सेवाओं पर भी इस चीज का असर आना संभव है। नहीं, वो नहीं करना चाहिए, नहीं वो नहीं करना चाहिए वो तो डायरेक्ट पाप हो गया बाबा को पत्र किस तरह से लिखें? प्रश्न तो बहुत अच्छा है, कागज लो, बाबा से बात करो, जैसे आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हो और उसको आप पत्र लिखें, वैसे ही बाबा मोस्ट बिलविड फ्रेंड के रूप में, साजन के रूप में इमर्ज करके जो चाहे लिख दो, जो चाहे मतलब आप उसे किसी को न दिखाएं, अपनी डायरी में रख ले, लिख के उसका आनंद लो। हैं? नहीं, अपने ही पास रख लो, वो तो आपको आनंद आएगा उसका क्योंकि बहुतों को पत्र लिख के लेटर बॉक्स में डालने से घबराहट होती है ना, कोई पढ़ेगा तो पत्र लिखने मजा नहीं आता है ना, अगर बीच में पोस्टमैन पढ़ ले तो पत्र सोच समझ के लिखना पड़ता है ना, तो आप उसको किसी को नहीं दिखाना है, इस संकल्प से अपने आनंद के लिए पत्र लिखे, अपना चार्ट दे बाबा को, शिकायत हो आपके मन में वो कर दे, कोई कमी सुनानी हो वो सुना दे, प्यार का पत्र लिखे ऐसे ही, उसके लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा ना, रोज आप इतने पत्र लिख के मधुबन कैसे भेजेंगे, दृष्टिवत्ती संकल्प शक्ति को कंट्रोल में कैसे रखें, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है भाई क्लास का। सहज उत्तर चाहते हैं तो ये कि अपनी बुद्धि को, जो तीसरा नेत्र है, उसको शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर करने का अभ्यास कर, तो उससे सब चीजें धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएं। विस्तार के बाद एक साथ सार में कैसे आना है तथा विस्तार का प्रभाव न पड़े इसका क्या पुरुष, इसका भी यही पुरुषार्थ है कि विस्तार के बाद अगर सार में आना चाहते हैं तो बुद्धि को ऊपर निशाने पर स्थिर करने का अभ्यास होना चाहिए, उसी समय नहीं पहले से ही अभ्यास होना चाहिए, ताकि किसी विस्तार के बाद आप एक सेकंड में निशाने पर अपनी बुद्धि को स्थित कर दें। इसके लिए अभ्यास की जरूरत जरूर है, लेकिन थोड़े अभ्यास के बाद आपको यह अनुभव होगा कि मान लो कोई कर्म आपको विस्तार में ले गया कभी और आप इसके अभ्यासी हैं तो जल्दी ही उसका प्रभाव समाप्त। ठहरो जरा ये पढ़ लें, सारे दिन में कौन सी अष्ट शक्तियों में से कौन सी शक्ति प्रयोग करें इसका कैसे पता चले? ठीक है, कंप्यूटर रख लो आप अपने पास, उससे पूछते रहना, कंप्यूटर आपके पास ही है, कौन सा? ब्रेन। आप स्वयं ही पूछ लिया करें, बाबा को याद करें, और कंप्यूटर का बटन दबाए अंदर ही, तो वो आपको बता देगा कौन सी शक्ति किस समय प्रयोग करनी है। योग का प्रयोग किया है परंतु पता कैसे चलता है? अगर हमारे प्रयोग में सफलता हुई है तो हमें खुशी संतुष्टि का अनुभव होगा तत्काल, एक बहुत सुखद फीलिंग होगी। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया भाई। तपस्या वर्ष के अंदर संपूर्णति की स्थिति बनाने की विधि, तपस्या वर्ष के अंदर संपूर्ण स्थिति बनाने की विधि, क्या उत्तर देंगे आप इसका? संपूर्ण समर्पणता। आगे चिंतन जिसने प्रश्न लिखा है वो खुद कर ले। संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्णता है। आप अपने मन को, बोल को, कर्मों को, संस्कार स्वभाव को, समय को, शक्तियों को समर्पित करने का अभ्यास करें। बहुत डीप पुरुषार्थ है ये, पर यही शॉर्टकट रास्ता है। कई बार वृद्धावस्था में आदमी को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और कुछ घंटे बाद उसमें सोल वापिस आ जाती है। वे आत्मा आकर कहती है कि मुझे 3 या 4 दूत आकर ले गए थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। और धर्मराज के आगे पेश किया तो उसने मुझे धक्का दे दिया और उसने दूतों से कहा तुम गलत आदमी को ले आए, और कुछ समय बाद उसी का नाम का दूसरा आदमी मर गया। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रश्न ये नहीं कि ये कैसे होता है, लेकिन ये है कि ये क्यों होता है। एक्चुअली इसका कारण आज तक एक ही समझ में आया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रश्न बहुत लोग पूछ लेते हैं, शिविर वाले पूछ लेते हैं कई बार कि भाई ऐसा प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है कि मरना एक को था, मर दूसरा गया और धर्मराज ने उसको वापिस कर दिया के, और ऐसी कहानियां भी पुराणों में हैं। ये केवल मान्यता ऐसी नहीं है, पुराणों में ऐसी कहानियां बनी हुई हैं। आपको एक चीज का मालूम हो, आजकल साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक लोग एक चीज पर पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरह स्पष्ट हो चुका है उन्हें कि मनुष्य पूरा ही जीवन अपने ब्रेन में जो भावनाएं भरता रहता है, जो कुछ उसके बिलीफ्स विश्वास भरे हुए हैं पूरा जीवन, वो मृत्यु के समय उसके सामने उजागर हो जाते हैं। वो सब प्रिंट होता है। हमारा ये ब्रेन और बुद्धि इतना सेंसिटिव कैमरा है कि जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो हमें विश्वास हो गया है, वो भरता रहा है ब्रेन के अंदर, और जब भी हमारी स्मृति क्लीन होगी वो उभर जाएगा। और जब मनुष्य मरता है तो मरने से पहले कुछ समय तक उसकी स्मृति पूरी क्लीन हो जाती है। यही बात हम सबके साथ होगी जब हमारी फाइनल डेथ है ना सबकी, तो ऐसा प्रभाव होगा इस सृष्टि पर कि हरेक की स्मृति पूरी तरह स्वच्छ होगी और हरेक को उसके 21 जन्मों का, 5 जन्मों का स्पष्ट दर्शन होगा। कोई कराएगा नहीं। हाँ, हर जन्म में भी ऐसा होता है मृत्यु से पहले, लेकिन अब अंत में ऐसा होगा कि हरेक को उसके पिछले जन्मों का और हम सबको अपने अगले जन्मों का स्पष्ट फीलिंग कि तुमने ये पाप किए। कोई दिखाएगा नहीं उसको एक्चुअली, वो स्वतः ही हमारी स्मृति क्लीन होते ही, क्योंकि वो भरा हुआ है सब अंदर, बाहर हो जाएगा। तो ऐसे जो विश्वास, जो श्रद्धाएं और जो कुछ जिसने अपने अंदर भर लिया है, वो मृत्यु से पहले उसे फील होता है। तो इसमें ये होता है, हो सकता है कभी कभी कि ब्रेन से जो बहुत सारी नर्व जुड़ी हुई हैं, जिससे ब्रेन काम कर रहा है, वो डिसकनेक्टेड हो जाती हैं। आत्मा रहती ही है, लेकिन उसका कनेक्शन बाकी सब चीजों से कट जाता है और उसकी नाड़ियां नहीं चलती, उसका हार्ट नहीं चलता, और डॉक्टर लोग उसको ये मर गया है ऐसा घोषित कर देते हैं, लेकिन आत्मा वहीं रहती है और अपनी क्लीन स्मृति के कारण जो कुछ उसने विश्वास धारण किया है उसकी उसको फीलिंग्स होती। बाकी ऐसा होता तो नहीं है, न कहीं धर्मराज बैठा है, न यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, ना वो धक्का देगा। मनोवैज्ञानिकों की खोज आज तक इतनी है। इसी आधार पे साक्षात्कार होते हैं भक्ति में। मान लो कोई हनुमान की पूजा कर रहा है और हनुमान 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 ही भर लिया है भावनाओं में, तो एक दिन आएगा जब उसको हनुमान ही दिखेगा और वो साक्षात्कार में बदल जाएगा। बोलो दूसरी? नहीं, उसका तो पूरी डेथ हो सकती है उसने। हाँ, अभी इसके पीछे कुछ रहस्य हो सकता है और भी, लेकिन वो तो समझो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, इसलिए उसको तो फाइनली डिक्लेयर कर दिया, और इसने अभी तक शरीर छोड़ा नहीं था। ऐसे विदेशों में आजकल बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। हंसा बहन जो आई हुई है वो सुनाती रहती है, वो उससे जुड़ी हैं, जिसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। तो जब वो ऑपरेशन करते हैं, कोई मरने वाला होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं निकल के सूक्ष्म शरीर से छत के निकट पहुंच गया और सारा ऑपरेशन देख रहा हूं, या मेरा जो दूसरा संबंधी जाकर उसको मैसेज दे आया मैं कुछ, और फिर वो शरीर में आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी फीलिंग होती है और इनपे आजकल रिसर्च चल रही है। यही बात और स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है कि उसी नाम का व्यक्ति क्यों मरता है, इसमें क्या गलती हो जाती है। हो सकता है ऐसी भी कुछ सूक्ष्म जो ड्रामा की चेन चल रही है, ऐसा कुछ गलत प्रयोग उसमें होता भी हो, तो वो आगे चल के जैसे खोज हो रही है वो स्पष्ट होता जाएगा। बाबा ने कहा सोल तो आती नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं के कारण उसका पुण्य उसको पहुंच जाए। मच्छर मकोड़ों को मारना संपूर्ण हिंसा है। ठीक है आपकी बात, ये सब हिंसा में ही आता है, लेकिन जब हम काम क्रोध की हिंसा को पूरी तरह छोड़ देंगे तो हमें इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रकृति स्वतः इनको नष्ट कर देगी। ठीक है, अभी तो क्रोध भी है और काम भी, दोनों हिंसाएं थोड़ी थोड़ी सबके अंदर ही है, इसलिए उस हिंसा का कोई खास महत्व नहीं है। खटमल आपकी हिंसा कर रहे हो, उसको आपने मार दिया तो कोई खास पाप नहीं लगेगा। अच्छा आपने चूहे मारे हैं, ठीक है। अच्छा वही कंबलों का नुकसान कर रहे थे, आपने उनको मार दिया, ये तो क्लास होगा, अभी क्लास होगा इस पे, अभी समाप्त कर देते हैं। ओम शांति। आगे भी बहुत क्वेश्चन आंसर है, सारे अभी खाली ना करो, और भी बहुत टीचर आएंगे। ठीक है हो जाएगा, अभी दूसरी प्योरिटी पे तो क्लास ही होगी, फिर चर्चा करें। चलो बाबा की याद में देखो, एक सेकंड में पहुंचो, बुद्धि को लगा दो ऊपर निशाने पर। ओम शांति।